આત્માનું શાસન, લેક્ચર નંબર 69. ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય, ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ. નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો વર્ષાયાણં, નમો લોયે સૌવસાહુણં, લક્ષ્મીનિવાસનિલયં, વિલીનવિલયં, નિધાય રદિવીરં, આત્માનુશાસનમહં, વક્ષે મોક્ષાય ભવ્યાનામ. પૂજ્ય શ્રી ગુણભદ્ર આચાર્ય રચિત યે આત્માનુશાસન નામક ગ્રંથ હૈ, ઉસ પર ક્ષુલ્લક મનોહરજી વર્ણી સહજાનંદજી કે લેક્ચર્સ હુએ હૈ, ઓર ઉસ આત્માનુશાસન પ્રવચન પુસ્તક દૂસરી, ઉસમે 26 પૃષ્ઠ પર આ ગયે, 26. यहां हमने 90 नंबर का श्लोक पढ़ा था और उसमें जो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था की बात हमने देखी थी. अब उसी की बात आगे बढ़ाते हुए नए पैराग्राफ वहां से शुरू करते हैं. आबाल वृद्धों में, आबाल वृद्ध ने बाल सहित वृद्ध, आबाल वृद्ध समझते हैं ना, बाल से लेकर वृद्ध तक, बच बच बालक से लेकर वृद्ध तक, आबाल आबाल वृद्धों में. ये पद्धति है इसी शब्द बनाने की, कोई ऐसा मालूम है दूसरा शब्द आ लगा के? आबाल गोपाल, ये हो गया ना, आबाल वृद्ध क्या है, आबाल गोपाल क्या, एक ही बात है. हाँ, आमरण उपोषण वगैरह तो ऐसा कहते हैं, परंतु आकर्ण नयन नहीं समझे, वो बड़ी बड़ी आंखें होती है ना, ऐसी आंखें यहाँ तक, कर्ण तक की आंखें, आकर्ण नयन. अजानु बाहुस ऐसा सुहास्य उदन, अजानु यानी जानु यानी घुटना, वहां तक के बाहु ऐसे. देखो, आबाल वृद्धों में परस्पर दूसरे को सुखी मानने का भ्रम, वो पैसा वाला है बहुत सुखी है ऐसा लगता है ना, ये सुखी मानने का भ्रम. बचपन की अवस्था में तो जवानी से भी अधिक क्लेश है, पर लगता ऐसा है कि बच्चे अच्छे हैं, बड़े होने पर लगता है वो बच्चे अच्छे हैं. जब बालक थे तो कब मैं बड़ा हो जाऊंगा, वो कितने सुखी है, हमको ये नहीं सब करना, ये सब हम मना करते हैं आदि आदि, पराधीनता लगती है. और बच्चे कोई 5-7 साल के हो तो वे सोचते कि बड़े लोग बड़े अच्छे हैं. बड़ी अवस्था के लोगों की, उन बूढ़ों की बात को उपादेय मानते हैं, सो उनकी नकल भी किया करते हैं. उन बूढ़ों जैसा कमर झुकाकर लाठी लेकर चलना, वैसा ही खासना, और इसमें वे बच्चे कुछ अपना बड़प्पन सा समझते हैं. अपने को करने का यही काम है, ये लोग बड़े अच्छे हैं, बच्चों को वृद्धावस्था वाले सुंदर लगते हैं, बड़ों को बचपन की अवस्था वाले सुंदर लगते हैं, दुखी सभी एक से है, यानी सारे दुखी है, केवल दूसरों में वो सुखी है ऐसा लगता है उनको, कल्पना कर लेते. अहितकारी कर्मों के प्रति, इन कर्मों ने क्या क्लेश उपजाए, इनके निमित्त से हम कैसी दयनीय हीन स्थितियों में आए हैं, यह बताया जा रहा है. इतनी हीन स्थिति पाकर भी दुखों से दूर होने का प्रोग्राम मन में बैठता ही नहीं है, यानी भले अभी समय है, आयु अभी है बाकी, फिर भी ये अंदर से यही करने योग्य है और इसकी उत्कृष्टता भाषित ही नहीं होता है. कहते ना, दुखों से दूर होने का प्रोग्राम मन में बैठता ही नहीं है. अरे जो कुछ यहाँ मिला है उससे क्या पूरा पड़ेगा, तृष्णा करके असंतुष्ट रहकर यह जीवन बिता दिया जाएगा, और इसे आगे अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। इन कर्मों ने जीव का अनंत बार बुरा किया। पेज नंबर 26, सेकंड पैराग्राफ, अहित कर्मों के प्रति लिखा है ना, उसमें पांचवी लाइन, इन कर्मों ने जीव का अनंत बार बुरा किया, इनके नाश करने का मन में संकल्प क्यों नहीं करता? बाल्यावस्था के कष्ट बालक ही तो भोगते हैं। कुछ थोड़ी सी गलती हो जाए तो माँ बाप उसे पीट देते हैं। वे बच्चे अपनी कल्पनाओं में बसे हुए दुखी होते रहते हैं। जब बाल्यावस्था आई, किशोर अवस्था आई, तो उस समय के क्लेश भी विचित्र होते हैं। यानी उस अवस्था के जुदे जुदे उनके जो क्लेश दुख जो होते हैं। मध्य अवस्था में विवाह हुआ, बड़े हुए, अब मध्य अवस्था के क्लेश नाना प्रकार के हैं। धन का उपार्जन करने में क्लेश, और जिनको जितना धन मिला है वे उतने को पर्याप्त समझते ही नहीं है। उससे अधिक होता तो सुख था, ऐसी कल्पना बन जाती है। सो जो कुछ पास में है उसे भी आराम से नहीं भोग सकते। क्यों? तृष्णावश हो दुखी है, उतने में सुख नहीं है, दुखी होते रहते हैं। यही स्थिति है मध्य अवस्था की। इस जवानी में भी इन कर्मों ने क्लेश दिया, ये ऊपर उस पर उपचार कर रहे, आरोप कर रहे, इन्होंने कष्ट दिया। हम स्वयं कल्पना करके ऐसे ऐसे संयोगों में दुखी हो रहे, ये हमारी भूल है, कर्मों की नहीं। कर्म तो जड़ है, फिर भी ऐसा आरोप किया करके कथन करने की पद्धति है। सकल क्लेशों का सामना, ऐसा कोई दुख नहीं बचा जो न मिला हो, क्योंकि पांचों परावर्तन अनंतों बार किए हैं तो सभी दुखों से गुजरा है। सांसारिक रोग, मानसिक कष्ट, अनेक चिंताएं, कल्पनाएं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अथवा बैठे बैठे इच्छा बढ़ाकर, निदान बना बनाकर दुखी होते रहते हैं। इच्छा बढ़ाकर, निदान बनाकर, यानी मुझे ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होता तो शेख चिल्ली जिसको कहेंगे वही बात। सभी क्लेश इस जीव ने पाए हैं, कष्टों से परिपूर्ण यह मध्य अवस्था है। ये सब कष्ट कर्मों के निमित्त से ही तो होते हैं। कष्ट आया जीव में, उपादान है यह आत्मा है, पर ऐसा कष्ट भोगना इस आत्मा में अपने आप के स्वभाव से नहीं होता, ये बात कहना चाहते हैं। जिसको कहते हैं उपाधिक भाव, कर्म के उदय में होने वाले जीव के अपने भाव, वो जीव के अपने भाव ही दुखकारी है, परंतु कर्मों के उदय में वो हो रहे हैं। इतनी जो विविधता बताई जाती है वो कर्मों का उदय को सूचित करती है, नहीं तो जीव द्रव्य सब जीव द्रव्य है तो उसमें इतनी विविधता क्यों है? कोई एकेंद्रीय, कोई पंचेंद्रीय, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई ऐसा है, तो ये कर्मों का उदय बताता है। तो कहते कष्ट भोगना उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध, शांत, निर्विकार, ज्ञानानंदमय है, और स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। स्वभाव तो यानी स्वभाव होते हुए इसको इतना दुख हो रहा है, यह अचरज की बात है, क्योंकि उसने अपने स्वभाव को स्वीकारा नहीं है, ये उसकी भूल हो गई। इन कर्मों के निमित्त से हमें बार बार कष्ट भोगना पड़ा। देखो ये इतना अगर पराधीन होकर अगर भोगना पड़ता तो कर्म तो अनादि से है, और अगर वो कर्मों के कारण भोगना पड़ता तो अनंत काल तक भोगता ही रहता, उससे छूटने का मार्ग नहीं मिलता। परंतु ये छूटने के लिए स्वाधीन है, ये बता रहे क्या कहते हैं, कर्मों के निमित्त से हमें बार बार कष्ट भोगना पड़ा, इस पर भी इन कर्मों से विरक्ति नहीं आती। यह समझाना चाहते कि अरे वो कर्मों ने इतना तो उनसे दूर हो जाना, तो उनसे विरक्त हो जाना कर्मों से, तो उसी में पड़ा रहता है। ओ कितना कषायों का मैल चढ़ा हुआ है कि कषायों से दुखी भी होते जाते हैं और उन कषायों को छोड़ भी नहीं पाते, ये बात है। मूल में मैं उसमें से अपनी भिन्नता पहचाननी है, ये कषाय ने राग द्वेष मोह जो परिणाम है उनसे मैं जुदा हूं, और मेरा स्वभाव ऐसा, इस तरह से स्वभाव की महिमा करके उसी में लीन होंगे तो कषायों में जो हम रचे पचे हैं उसमें एक में एक मानते हैं अपने को, वो बात छूट जाएगी। पेज नंबर 27, वस्तु स्वरूप का अभ्यास करो, भेद भावना का अभ्यास करो, जिसको भेद ज्ञान भी कहते हैं, अने मैं कौन हूं, पर कौन है, स्व पर का भेद अच्छी तरह से निश्चित करना है। समग्र परवस्तुओं से और औपाधिक भावों से, ये महत्व की बात है। समग्र परवस्तुओं में शरीर से लेकर सभी बातें आ गई, और औपाधिक भाव यानी अपने में उठने वाले रागादि भाव, मोह राग द्वेष के परिणाम, उनसे न्यारे निज ज्ञान तत्व की आराधना करो। ये बिल्कुल रहस्य और इतने सिंपल एक वाक्य में बता दिया। भेद भावना का क्या अभ्यास करना है कि समग्र परवस्तुओं से और अपने में उठने वाले औपाधिक भावों से, उससे जीव जुदा नहीं होता है, वो पुण्य पाप के परिणाम उसमें बिल्कुल एकत्व बना के रखा है उसने, ये मूल भूल है उसकी, और ये रहस्य है ये अपने जिनागम का। किन औपाधिक भावों से भी न्यारे कौन, मैं स्वयं, निज ज्ञान तत्व की आराधना करो यानी उसका स्वीकार करो, उसका निर्णय करो, उसी में एकाग्र हो जा। आत्मा के ही भाव है, राग द्वेष आत्मा में उठ रहे हैं, वो कैसे है, कर्म के उदय में होने वाले जीव के अपने भाव है। जैसे पानी का स्वभाव कैसा है आपको पूछेंगे तो क्या कहेंगे, शीतल, परंतु वो पर्याय में गर्म हो रहा है ना, अग्नि के संयोग में वो स्वयं गर्म हो रहा है, ये भी योग्यता पानी में पड़ी है। ऐसे ही कर्मों के उदय में जीव स्वयं औपाधिक भाव रूप हो रहा है, इसलिए इनसे भी मैं जुदा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे गर्म होना पानी का कायमी स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव क्या पूछने पर शीतलता, परंतु मेरा स्वभाव क्या है, तो नहीं, ये तो पुण्य करना पाप करना, उसमें ज्ञान ऐसा जैसे शीतल बिल्कुल ठोस एक शब्द में फटाकन बता दिया, तो मेरा स्वभाव क्या है, हाँ, परंतु किसमें एक में एक मान लिया हमने, ऐसा नहीं कहा कि कभी शीतल है कभी गर्म है, ऐसा नहीं कहा आपने, शीतल है कह दिया, ऐसे मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र वो मेरा स्वभाव है, और राग आदि वो मेरा स्वभाव ही नहीं है, इसको औपाधिक भाव कहते हैं। कर्म के उदय में होने वाले जीव के विपरीत भाव, उसको औपाधिक भाव कहा, यानी उससे मैं जुदा हूं ये नक्की करना है, उसमें मैंपना स्थापित उसमें नहीं करना है, मैंपना किसमें स्थापित करना है, स्वभाव में। कर्मों का बैर, इन कर्मों ने तो दांत भी तोड़ डाले वृद्धावस्था में, कोई किसी के दांत तोड़ डाले तो कितनी कलह हो जाती है, हमेशा इनको हंसी आ रही है। और ये दांत अपने आप जो गिरते हैं, इनको किसने तोड़ा, कर्मोदय ने, तो कर्मोदय दांत भी तोड़ देते हैं, आंखें भी फोड़ देते हैं, अनेक कष्ट आए, बार बार कष्ट भोगे, फिर भी उन कर्मों के नाश का उद्यम नहीं करना चाहते, यानी ये जीव विचार नहीं करता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वभाव है, और इन दुखों से मैं कैसा छूट सकता हूं, ये बात यहां हो रही बार बार। ये कर्म जो दुखों के निमित्त भूत है, ये पर पदार्थ है, इनका हम कुछ परिणमन नहीं कर पाते, तो इनका नाश कैसे करेंगे, अरे अपने परिणामों को हम निर्मल बनाए, उपाय क्या है, अपने परिणामों को निर्मल बनाए, भाव कर्म रागादि भाव इन्हें न होने दे, ये न होने देने उसका लक्ष्य, उसका कंट्रोलर बना के न होने दे की बात नहीं है, हम ज्ञान में रहेंगे तो ये उठेंगे नहीं, तो इसको न होने दे, तो ये कर्म तो अपने आप खिर जाएंगे। जैसे हम ज्ञान में भाव रूप रहेंगे तो रागादि भाव भी नहीं उठेंगे और कर्म तो जाने वाले खिर जाएंगे, उनके नाश का क्या उद्यम करना, यानी वो हमारे हाथ की बात नहीं, हमारा पुरुषार्थ कर्म में नहीं चलता, हमारा पुरुषार्थ अपने आप में चलता है। वृद्धावस्था में इन कर्मों के निमित्त से तेरा बड़ा अपमान हुआ, दांत तोड़े, आंखें फोड़ी, कान बहरे कर डाले, मुंह टेढ़ा कर दे, शिथिल हो गए, अरे ऐसा कोई पुरुष करे तो लोग उसे बड़ा अन्यायी कहते हैं, और इन कर्मों के उदय से ये सब होते जा रहे हैं, उन कर्मों के विनाश का चिंतन नहीं करते। आत्मोपलम्भ का अभ्यास, उपलम्भ है ने उसकी बात प्राप्ति होना, अनंत काल से हाँ वो अनंत परावर्तन कर चुके, अनंत परावर्तन, अभी आधा परावर्तन, और वो भी सबको नहीं करना पड़ता। सम्यक तो प्राप्त हो जाए तो उसे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गिर जाता है तो इतना लंबा काल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। वो सबको लगता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत छोटा नहीं, वो भी अनंत काल है, क्योंकि मिथ्या तो में जाएगा, एक इंद्रिय में चला जाएगा, लंबे काल तक आएगा ही नहीं वापस, तो इतना काल घूम सकता है वो, क्योंकि फिर दोबारा सम्यक तो ही नहीं प्राप्त किया बीच में। तो ये मिथ्या तो में एक वो सादी मिथ्या दृष्टि है ना, अभी इससे ज्यादा नहीं भटकेगा संसार में, ये नक्की है। क्या वो भी अनंत काल है? अनंत काल है वो तो। ऐसे क्षमिक समय दृष्टि, दो छासर सागर है, एक छासर सागर, फिर तीसरे में आया, फिर और एक छासर सागर, ऐसे भी बहुत बार इन्हें कंटिन्यूएशन में अगर ऐसा मिथ्यात्व का अंतर हो जाएगा, फिर वो मिथ्यात्व में चला जा सकता। हाँ अगर जाएगा नहीं तो क्षायिक होकर मुक्त चला जाएगा। वही तो दो छासर सागर बताया, और उसमें क्षायिक हो जाएगा। क्षायिक होने के बाद अभी जितना काल उसका, और थोड़े भव, एक का दूसरा भव और हो सकता है उसका। किसका? दो छासठ सागर ने मिथ्यात्व का अंतर बताया मैंने। अगर उसका सम्यक तो बना रहे, सम्यक तो बना रहे का अर्थ क्या है? वो तो वेदक सम्यक तो में लगातार, हाँ तो उसको क्षायिक तो होना पड़ेगा ना। दो नहीं, एक छासठ सागर नहीं भेजना है ना उसको, सम्यक तो छूटना नहीं वाला है। आपको कह रहे हैं आपकी कंडीशन क्या है, सम्यक तो नहीं छूटे, हाँ तो मोक्ष चला जाएगा। दो छासठ सागर में और थोड़ा ऐड करो, क्योंकि उस भव ने उसने क्षायिक भी कर दिया, और हो सकता है दो छासठ सागर में जाएगा और एकाध भव करके जाएगा। दो छासठ नहीं, एक ही छासठ, अगर सम्यक तो से नहीं छूटना है तो एक ही छासठ सागर। मिथ्यात्व में से फिर दोबारा मिथ्यात्व में न जाए उत्कृष्ट काल तक, उसका अंतर है वो दो छासठ सागर वाले। हाँ आत्मोपलम्ब का अभ्यास भैया, एक बार तो अपनी चीज छू लो, यानी उसमें संतुष्ट नहीं होना, अरे वाह चलो समय तो हुआ, अभी अर्ध पुद्गल ही रह गया। उल्टा तो उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चौकड़ना रहेगा, अरे अपने को तो अभी गिरना नहीं है और भटकना नहीं है बस। जिसको सम्यक तो होता है उसको कहते सम्यक हुआ तो क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होगा, चारित्र से मोक्ष होगा। ख्याल में आई ना बात? यहाँ कहते एक बार तो अपनी चीज छू लो। अपनी चीज क्या? आत्मा का ज्ञान स्वभाव, ज्ञान प्रकाश, निज स्वरूप, और उसे छूना कैसे होगा? कहते इस उपयोग से, ज्ञान से अपने ज्ञान को, यानी इस ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व में लगा लो। क्या कहते हैं? ये हमारा तो जानना 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 चल रहा है, वो कहाँ लगाना है? अपने को जानने में लगा लो, बस इतनी बात है। वहां जो अनुभव जगेगा वही अनुभव शरण है। दुनिया में हमने शरण किस किस को माना? गुरु का शरण, देव का शरण, और अन्य किसी का शरण, पैसे का शरण, बच्चों का, माँ बाप का, तो कहते हाँ कर्मों का। हाँ तो अनुभव जगेगा वही अनुभव शरण है। इन अनंत जीवों में से एक दो जीवों को अपना सब कुछ परिचयी मान लेना, यही मेरे सब कुछ है, ऐसी जो एक ब्रह्मपूर्ण श्रद्धा बना रहा है, यह इस आत्मा भगवान को एक मुदी चोट की तरह निरंतर कष्ट दे रहा है। अपने ज्ञान स्वभाव का उपयोग करना और उस ज्ञान स्वभाव में ही उपयोग करना यानी उपयोग उसमें लगाना और उसी में लगाते रहना और उस ज्ञान स्वभाव में ही उपयोग को स्थिर बनाना, यह बात सुगम है। सुगम क्योंकि हमने बाकी सब सुगम माना है, रसोई करना, चाय बनानी तो सुगम है। क्योंकि देखो हमने मानी नहीं है और उसका कभी भी प्रयत्न नहीं किया। जब भी पहले ये नक्की करो ये मेरी बात है और मेरे लिए सुगम है, क्योंकि अनंत जीवों ने करके दिखाई है सुगम हो सकती है, नहीं तो आचार्य क्यों खोटा उपदेश देते। जिन्होंने स्वयं आत्मा का अनुभव कर किया है वही तो कह रहे हैं ना कि ये सुगम है करके। आप कहेंगे उनके लिए सुगम है, परंतु वो भी पहले मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? उन्होंने भी सुगम किया उसको, क्यों? उन्होंने सही मान लिया। इसलिए अभी सारी अपने भ्रमणा छोड़ दो, सही मानने लगो तो ये सुगम लगेगा, क्योंकि दूसरे का परिणाम तो हम कर नहीं सकते, तो नक्की है ना कि अभी नक्की नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपना परिणाम स्वयं कर रहा है, परंतु हम इतने वो आदि बन गए, आदि नहीं यूज टू, जिसको अभ्यास हमारा प्रैक्टिस हो गई है कि रूटीनली जो हम सब काम करते हैं, ये सब परद्रव्यों का काम हम कर रहे हैं, कितना आसान है। अपना काम ही नहीं करते हैं और कहते कि कठिन है, कभी सोचते ही नहीं है कि हमें अपने का ज्ञान अपने ज्ञान में लगाना, ये सोचते ही नहीं, इसे विचार ही नहीं करते और पहले से उसको कठिन मानते रहते हैं। जैसे कर्णानियों को कोई पढ़ना नहीं चाहता, नाम से भागते हैं, कठिन है मान देते हैं, और यहाँ आने वाले इनको आसान हो जाता है। ये मनीषा बहन कितने, अरे नहीं वो इतना पुरुषार्थ करके इतने भागों तक आ रही। हाँ कल से, जिसका कल नहीं उठता ना वो हमेशा कल से ही कहता है चलो 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 आगे, आपकी चर्चा बाद में करना क्या कहते हैं कि सुगम है बहुत अच्छा, आप सुगम सुगम कहो, सुगम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ तो कहते यह बात सुगम है, पर इसके लिए हमें चाहिए अहर्निश अभ्यास। क्या कहा अभी, यही तो बात की ना अपनी, और बाकी चीजों हमने अपनी शब्दों में बताया कि प्रैक्टिस है अन्य चीजों की, बहुत आसान लगती है। कर्तव्य तो यह होना चाहिए जितना समय हमारा धनार्जन में लगाया जा रहा हो अथवा जितना समय गृहस्थी की व्यवस्था में लगाना पड़ रहा हो लगाए, पर उससे बचा हुआ शेष समय तो सत्संगति, धर्मचर्चा, ज्ञानाभ्यास आदि कार्यों में लगाए। यानी हमें ही इसमें से टाइम निकाल कर इसमें लगा सकते हैं कि नहीं सकते? जो मैक्सिमम पॉसिबल जो आवश्यक चीजें वो तो करनी है, रोज की रसोई बनानी है, खाना है, ये करना है, वो करना है, परंतु फिर भी समय बहुत सारा बचता ही है। नगर में दो चार आदमी भी ऐसा करने लगे तो यह परंपरा बन जाएगी। उनके बाद फिर कोई लोग होंगे, हित प्रयोग में हित काम करने तो यही है आत्मदर्शन व आत्मरमण। दुनिया में जो कठिन बातें लगती उसके लिए और ज्यादा मेहनत करते कि नहीं करते? और यहां पहले से नहीं नहीं होगा ही नहीं मेरे से करके छोड़ ही देते हैं, कठिन है बहुत करके। केवल बातों से पेट नहीं भरता, यानी बातें सुनने से भी कुछ नहीं होना, बातें सुनना यानी स्वाध्याय सुनना। इस संसार के संकटों से सदा के लिए छूटने की बात सोचो और काम कुछ न करना पड़े, यह नहीं हो सकता। एक बालक 10-12 वर्ष का अपने माँ से कहने लगा, माँ मुझे तैरना सिखा दो। वह बालकों को तालाब में तैरता हुआ किलोल करता हुआ देखता था। एक दो बार वह खुद पानी में घुस गया था, डूबते भी बचा था। बहुत से बालकों को डूबते मरते भी देखा था, पर उसके चित्त में यह उत्सुकता जगी कि मैं भी तैरना सीख लूं और पानी में तैर कर खेला करूं। सब बालक अपनी माँ से बोला, माँ मुझे तैरना सिखा दो। माँ कहते, बेटा सीख जाओगे, सिखा देंगे। हाँ सिखा दो, सिखा तो दो, मगर पानी में मुझे पैर न रखने पड़े। पानी में मैं पैर नहीं रखूंगा और मुझे तैरना सिखा दो। अब बताओ, पानी में घुसे बिना तैरना कैसे सिखाया जा सकता है? तो कठिन है, कठिन है। और हम कभी कोशिश ही कभी एक बार भी ट्राई नहीं करते कि ज्ञान को ज्ञान में लगाने की, और बस कठिन है करके छोड़ देते हैं। जैसे अन्य चीजें करने का, जिसको हम कहें वृत्ति का उठना, शुभ या अशुभ भाव बनते नहीं, क्या वृत्ति उठती है कुछ करने की, तो क्या ऐसे इसके लिए कभी वृत्ति उठी कि चलो मैं अभी देख तो लूं मैं कैसे अंदर में स्थिरता हो सकता है, ट्राई तो करूं। देखो आगे आए, प्रयोग बिना विद्या का अविकास। प्रयोग का ही अर्थ होता है प्रैक्टिस, उसके बारंबार उसके लिए अभ्यास करना। एक स्कूल में बच्चों को तैरने की शिक्षा दी जा रही थी, उनके कोर्स में था। सो अध्यापक ने किताबों से तैरने की खूब शिक्षा दी, इस तरह कूदना चाहिए, इस तरह लेट जाना चाहिए, ऐसे हाथ पैर पटकना चाहिए, खूब सिखा दी। 6 महीने का कोर्स था। अब इसके बाद मास्टर ने कहा, अब सब लोगों की परीक्षा होगी। सब बच्चे नदी के किनारे गए। अब मास्टर उन बच्चों से कहता है, हम सब 1, 2, 3 कहेंगे, सो 3 कहने के साथ ही साथ सब बच्चे नदी में कूद जाएंगे और अपनी तैरने की कला दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात, मास्टर ने 1, 2, 3 कहा कि सभी बच्चे नदी में कूद गए। सभी बच्चे डूबने लगे, तब नाविक आया और उन बच्चों को उठा उठा कर नाव में धरा। फिर नाविक ने मास्टर से कहा कि तुम बड़े बेवकूफ हो, इन बच्चों को यूं ही नदी में पटक दिया। मास्टर कहता है, तुम क्या जानते हो, हमने 6 महीने तक इन बच्चों को खूब ट्रेनिंग दी, हर बात सीख ली, कैसे कूदा जाता है, कैसे तैरा जाता है। भैया इस किताबी पढ़ाई से तैरने का काम नहीं बन सकता। अरे यह तो प्रयोग साध्य चीज है, किताब साध्य नहीं। आत्मानुभव का प्रयोग, सभी का यही तो प्रश्न है ना? यह आत्मानुभव भी किताबी पढ़ाई से नहीं होता, वह तो प्रयोग साध्य बात है। लगाओ चित्त, अनुभव करो, हिम्मत बनाओ, सबको पर जानकर उनकी उपेक्षा करो। बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ ना पर की तरफ से, अपने आप के इस ज्ञान स्वभावी प्रभु से नेह लगाने की धुनी बनाओ तो यह बात मिलेगी। लौकिक में भी देखते हैं, कोई गायन में, कोई संगीत में, कोई क्रिकेट में, कोई कहीं बहुत टॉप पर पहुंचता है तो उसको उसकी कितनी धुन लगती है, उसको बाकी सब चीजें गौन करके पूरे घर से भागकर भी उसके पीछे लगता है कि नहीं लगता है। तो इसके लिए हमने क्या क्या किया है, क्या अंदर ही ऐसी धुन चलती है? ये क्या क्या कहने छोड़ने की बात नहीं है, ये पूरी गायक की धुन अंदर ही अंदर चलेगी 24 घंटे। तो कहते अपने आप के इस ज्ञान स्वभावी प्रभु से नेह लगाने की धुनी बनाओ तो यह बात मिलेगी। हम प्रयोग कुछ न करना चाहे तो यह सिद्धि नहीं हो सकती। और क्या हम बस इसको सुनो उसको सुनो, यह बात होगी ये वहां सुनना है, अभी सुनने 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 में ही हमने उसके प्रोग्राम बना दिए, पर सुने हुए को प्रयोग में लाने की कभी कोशिश नहीं की तो कैसे मिलेगा? सुनने मात्र से होने वाला नहीं, भले वो भगवान की भी क्यों न वाणी सुने, प्रयोग भी हमारा इस आत्मा के आराधना का तब बन सकता है जबकि उसकी एक धुनी बन जाए। चौबीस घंटे जिसकी जो धुनी होती है उसकी ओर ही तो उसकी प्रवृत्ति बनेगी। अपनी अपनी धुन देख लो, सब अपनी अपनी धुनी धुना करते हैं। देख लो जो जड़ पौद्गलिक वैभव, परिजन, रूप रंग, विषय कषाय में ही धुन बनाए रहते हैं, उनको उसकी ही धुन है। वे सब विनश्वर है, असार है, उनसे कोई शांति की सिद्धि नहीं है। धुन बने, लगन बने तो आत्मस्वरूप की आराधना की बने, यानी उसकी आराधना की धुन बनाए तो ही कार्य होगा। उसमें लगने वालों की प्रवृत्ति ऐसी होगी कि बात करते हुए भी बात नहीं कर रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं। जिनके अध्यात्म धुन बनती है उनके चित्त में वही बात बसी रहती है। प्रभु भक्ति की शरण रूपता। प्रभु की भक्ति करते हुए में प्रभु से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हे प्रभु मुझे शरण मिले। जब तक लगन नहीं लगी है तब तक ही शरण मांगी जाती है। शरण का मांगना तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रभु को यह न बताएं कि हम में लगी है लगन। लग तो जाए लगन, शरण होगे प्रभु, पर अपने चित्त से पूछो तो सही कि प्रभु से लागी लगन कि बच्चों और घर से लागी लगन। ये तो तुमसे लागी लगन है ना, वो तो गाते हैं ना उसकी बात है। मेटो मेटो जी संकट हमारा, क्या संकट है हमारा, बच्चों पर संकट आया, ये संकट आया, प्रभु की कहाँ लगन है। बच्चों की लगन है, उनके संकट मिटाने के लिए भगवान की तरफ दौड़ रहा है, उनकी भक्ति के लिए नहीं जा रहा, ये कह रहे हैं, यही बता रहे यहाँ पर। प्रभु की लगन लगी है कि बच्चों की लगन लगी है, आपने वो सुना है कि नहीं सुना। नहीं सुना, अच्छा इनसे पूछ लो बाद में। तो प्रभु से लगन लगी है कि बच्चों और घर से लगी है। यहाँ भगवान शरण देने न आएंगे, भगवान के प्रतिनिधि आप ही स्वयं हैं, और कोई गुरु भी उनके तरफ से प्रतिनिधि नहीं है कि भगवान का संदेश आपको पहुंचाएंगे आए कि, ये भी नहीं कर रहे कोई, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा, सब काम आप ही कर लेंगे भगवान के नाम पर। जो धुन होगी, जैसी लगन होगी, तैसा यहाँ बीतेगा गुजरेगा। ये सब चीजें उदारता बिना, त्याग बिना सिद्ध नहीं हो सकती। वैभव, परिवार, बच्चों में ही यदि लगन लगी है तो लगाए रहो, धुन में बसाए रहो। अंत बतावेगा, समय बतावेगा कि तुमने व्यर्थ समय खोया। जो जीवन व्यतीत हुआ है वह व्यर्थ ही गया, यह खुद मान जाएगा आप में। विषय खोज। जैसे जिसको खाज हुई है, दाद हुई है, खोजाते समय तो उसे आगे पीछे का भी ध्यान नहीं रहता, वो उसमें बड़ा चैन मानता है। जिनके दाद खाज होती है उनके गले में खूब बात उतर रही होगी। जैसे योगी लोग आत्म ध्यान करके खूब प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही ददैला भी खुजलाते समय सब दुनिया को भूल जाता है, हाथ पैर को टन्ना कर सुख लूट करता है, ठीक है, परंतु उसके बाद यह रोग और बढ़ गया। ये तो यही पोजीशन है ना, वो खुजाने से रोग बढ़ता है और इसको खुजाने में अच्छा लगता है, उस रोग को मिटाने की फिर पड़ती है। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय और मन का विषय यह खाज है। इस खाज को खुजाते समय आगे पीछे का कुछ ध्यान नहीं रहता, उस समय तो यहां सब कुछ नजर आता है, जब समय मरने का आता है तब मालूम होता है हमारा अतीत बिगाड़ का समय कितना खोटा गुजरा। यो ही बनी बात का मूल्य बिगड़े समय से पूछो। पछतावा होता है कि यो न व्यतीत होता तो अच्छा था। बने और बिगड़े का माप। एक अभिमन्यु नाटक में आया है कि जब अभिमन्यु गुजर गया तो उसकी माँ अपने मरे हुए बच्चों को देखने आई तो कुछ लोगों ने उस माँ को रोका, कहीं उस मरे हुए लड़के को देखकर यह माँ भी अपने प्राण न दे दे। उस समय माँ कहती है, करुणा निधान करुणा, करुणा भरे से पूछो। ज्वाला वियोगा का दुख छाती तरे से पूछो। क्या मूल्य है बने का बिगड़े समय से पूछो। बच्चे का प्यार उसकी माँ के हृदय से पूछो। उस समय उसको हितकारी मानो। श्री कृष्ण ने ही उसे रोका था। करुणा की बात करुणा भरे ही बता सकते हैं, वियोग का दुख वियोगी ही बता सकते हैं। बने समय का कितना बड़ा महत्व है यह बिगड़े समय से ही अंदाज किया जा सकता है। अभी तो सब बिगड़ा जा रहा है, विषयों की खास से सुख लूटे जा रहे हैं। अभी अच्छी स्थिति का मूल्य कुछ नहीं जच रहा है। निर्विकार ज्ञानानुभव में विविक्त निज अंतस्तत्व का आश्रय हो, उसकी जो स्थिति है उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह अभी विकल्पों का समय चल रहा है। जब बनने का समय आएगा तो बिगाड़ का खोटापन भी समझ में आएगा। क्या कहते हैं? जब आत्मानुभव होगा तो पता चलेगा क्या हमने कितना समय खोटा बर्बाद कर दिया है, और बने का महत्व भी बिगड़े समय की याद करके समझ में आएगा। अंतरंग निमित्त कारण, इन कर्मों के उदय से निमित्त से कैसी कैसी परिस्थितियां हुई है, बड़े बड़े अपमान हुए हैं, फिर भी इन कर्मों के ही अधीन चलने की चाह रखते हैं। पहले ही बात आई थी ना, ये कर्मों के उदय में इतनी इतनी उसकी बर्बादी हुई है, फिर भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। हे आत्मन, अपने अंत पुरुषार्थ को प्रबल बनाओ और अपना पौरुष स्वरूप संभाल कर कर्मों के अभाव से निराकुल रहने का अब संकल्प करो। वो कैसे करना क्या उसका रास्ता बता रहे हैं, पर ये अभी इसमें नहीं रहना, मुझे ये नहीं चाहिए, इतना तो नक्की कर सकते हैं। 91 पृष्ठ पे है अपना श्लोक 91। ये देखा है कि इसमें कोई सुधार है क्या? 91 अश्रोत्री व तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुति नाम श्रुति ही, वो श्रुति का ही आगे गया, चक्षुर विक्षितु मक्षमम तव दशाम दुष्यामि वांध्यम गतम। दुष्यामि और वांध्यम अलग अलग है क्या? तितराम चाहिए, तितम राम हुआ है, तितराम त के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, तितराम। कायोप्ययम कंपते निष्कंपस्त्वमहो प्रदीप्त भवने प्यास। प्यास से डबल क्यों हुआ? जरा 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 अप्यास है क्या? अपा डबल सो किया है उन्होंने, डबल से का अर्थ क्या है? ठीक है फिर पढ़ लेते हैं। अश्रोत्रीव तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुतीनाम श्रुति चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दुर्शामि वांद्यम गतम भित्यैवाभिमुखान्तकादतितरां कायोऽप्ययं कम्पते निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवने प्यासे जरा जर्जरे। इसका अर्थ देखते हैं। वृद्धावस्था विषय कान है, सो मानु और निकरी किया हुआ अपमान निंदादि रूप तिरस्कार लिए वचन तिनको न सुनिया चाहता संता सुनने ते रहित भया है। ये लोग कहते हैं दूसरे की मत सुनो, अपने सुनाओ लोगों को। बहुरी नेत्र है सो मानो मेरी निंद्य दशा देखने को असमर्थ हो संता अंधपना को प्राप्त भया है। समझ में आई ना क्या है? नहीं समझे? देखो क्या कहना चाहते है, वृद्ध अवस्था में बहिरापन क्यों आया है? तो कहते दूसरों ने किए हुए निंदा दी तिरस्कार रूपे वचन सुनने को नहीं चाहता है, इसलिए माने अच्छा ये इसलिए। और फिर नेत्र क्यों नहीं देख रहे? अपनी निंद्य दशा देखने के लिए वो नहीं चाहते नेत्र, इसलिए वो भी मंद हो गए। बहुरी यहू शरीर है सो मानु सन्मुख आया काल ते भय करी बहुत कापे है। सन्मुख आया काल ने अभी मरण नजदीक आया है तो वो नजदीक है इसलिए वो भय से कांप रहा है, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर कांपता है उसकी बात कर रहे हैं। बहुरी यहू शरीर है ते हो गया, ऐसे जरा करी जीर्ण भया। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे से जीर्ण हुआ है, जीर्ण समझते ना। अग्नि लाग्या मंदिरवत शरीर विषय तू निश्चल तिष्ठे है सो बड़ा आश्चर्य है। यानी यहाँ शरीर को ऐसे ऐसा कहकर फिर भी तू इससे मोह करता है, ममत्व करता है, इसके लिए सामने वाले शिष्य को जागृत करने की कोशिश कर रहे आचार्य भगवान। अग्नि लाग्या मंदिर यानी किसी घर में, मंदिर यानी घर, घर में आग लगी हो तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे, अपनी मौल्यवान चीज संभालेंगे, अपनी जान पहले से अपने को संभालेंगे। तो यहाँ तो हम अपने को नहीं संभालते, वो शरीर के ही पीछे लगते हैं, ये बात कहना चाहते। भावार्थ, मरण तो सर्व अवस्था विषय हो है, ताते ही स्याना हो सो तो निश्चित रहे नहीं, पहले ही परलोक का यत्न करे। समझती भाषा? हाँ। बहुरी वृद्ध अवस्था आए तो अवश्य मरण होने का नेम है। बहुरी विषयादिक के कारण सर्व शिथिल भय, अब भी यहां ही रहने की आशा करी निश्चिंत तो हो रहा है। सो जैसे कोई आगे करी बलता यानी जलता हुआ मंदिर विषय निश्चिंत तिष्ठे ताका आश्चर्य होए, तैसी तेरी दशा देखी हमको आश्चर्य भया है। यानी इसी दशा में भी तू प्रयत्न नहीं करता है तो बहुत आश्चर्य की बात है। अब निश्चिंत रहे उपाय का अभाव देखी ताको सावधान किया है। यानी ऐसे जीवों को सावधान करने, देखो आचार्यों की तो करुणा ही है, चाहे जिस प्रकार से भी जीवों को इसके प्रति लगाने की बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही हमारा दुख का कारण है कि हम सही बात नहीं समझ रहे हैं। कोई धन देकर किसी को कुछ खाना पीना देकर किसी का उपकार नहीं होता, ये जो महत्व का उपदेश है ये सबसे उत्कृष्ट चीज है, इसी से किसी का दुख दूर हो सकता है हमेशा के लिए। देखो आगे, वृद्धावस्था में बधिरता। वृद्धावस्था में इस मनुष्य की क्या हालत हो जाती है और उस हालत में भी यह अपनी रक्षा का कुछ विचार नहीं लाता है, इस मर्म का इस छंद में वर्णन किया है। वृद्धावस्था में कान बहिरे हो जाते हैं। बहिरे क्या हुए? वृद्धावस्था एक ऐसी असमर्थ दशा है कि इस अवस्था वाले को जो चाहे गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, ये सब बातें चलती है। अपमान निंदा तिरस्कार के वचन सुनकर इस बूढ़े पुरुष के कान थक गए। अब ये कान अपमान और निंदा के वचन नहीं सुन सकते हैं, इसलिए थक करके शिथिल हो गए हैं। कवि अलंकार में कह रहा है, वैसे तो जो हित की बात नहीं सुन सकते, हित की बात को हृदय में धारण नहीं कर सकते, वे सब बहरे हैं। हम हमेशा कहते हैं वो ये द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय को वाणी है, बोलते हैं, कर्ण नहीं है, सुनते नहीं है। हम भी क्या करते भगवान के सामने जाकर, गा गा कर भक्ति करते भगवान की, और भगवान की बिल्कुल सुनते नहीं है। तो क्या है, कान होकर भी नहीं होने के बराबर है, ये कहते हैं। यानी केवल शब्द सुनने को सुनना नहीं कहना, बहिरा कौन है, जो भगवान की बात नहीं सुनता वो बहिरा है, ये कहते हैं। बहरों की गोष्ठी। एक कथानक है कि एक मुसाफिर किसी गांव को जा रहा था। रास्ते में बहुत सी भेड़ बकरियां चराने वाला गडरिया इस मुसाफिर को देखकर सोचने लगा कि मैं इस मुसाफिर से कहूं कि तू 2 घंटे के लिए हमारी बकरियों को रखे रहना, हम घर जाकर भोजन कर आए और आकर संभाल लेंगे। भाग्य की बात है कि वह मुसाफिर भी बहरा था और वह गडरिया भी बहरा था। सो गडरिया मुसाफिर से बोलता है इशारा करके कि भाई इन बकरियों को रखाए रहना 2 घंटे के लिए, रोटी खाएं, हम फिर आकर संभाल लेंगे। वो मुसाफिर खड़ा हो गया, गडरिया भोजन करने चला गया। भोजन करके जब आया तो गडरिये ने सोचा इसने 2 घंटे मेहनत की तो इसे कोई बकरी इनाम में देना चाहिए। सोचा कि कौन सी बकरी दे, कोई ज्यादा काम तो किया नहीं, इतने 2 ही घंटे तो काम किया, बढ़िया बकरी देने लायक परिश्रम तो किया नहीं, इसे टांग टूटी वाली बकरी दे देना चाहिए। देने लगा वह अपनी लंगड़ी बकरी तो उस मुसाफिर ने सोचा यह कह रहा है कि तुमने मेरी बकरी की टांग तोड़ दी, तो गुस्सा में आकर कहता है हमने तो 2 घंटे इतना श्रम किया, फिर भी व्यर्थ का इल्जाम लगाते हो कि बकरी की टांग तोड़ दी। गडरिया ने समझा कि यह कहता है कि हम लंगड़ी बकरी न लेंगे, हम तो अच्छी लेंगे। सो कहता है गडरिया कि तुमने थोड़ी ही दे तो सेवा की, अच्छी बकरी तुम्हें कैसे दे दे। दोनों परस्पर में लड़ने लगे। इशारे से यह तय हुआ चलो अपने तीसरे व्यक्ति से इसका न्याय करा ले। अब वह तीसरा व्यक्ति ढूंढने लगे। रास्ते में सामने से इस मुसाफिर अपने छोटे घोड़े के बच्चे पर सवार हुआ चला आ रहा था। इन दोनों ने अपना झगड़ा उसके सामने रखा। भाग्य की बात वह घुड़सवार भी बहरा था। उसने समझा कि ये कह रहे कि यह घोड़ा चोरी का है। सो कहता कि यह घोड़ा तो हमारे घर की घोड़ी का पैदा हुआ है, क्यों बेकार में घोड़े की चोरी का इल्जाम लगाते हो, भगवान कसम हमने घोड़ा नहीं चुराया। तब उन तीनों में लड़ाई होने लगी। तीनों ही इशारे से तय यह हुआ कि चलो अपने किसी चौथे के पास चलकर न्याय करा ले। चले चौथे व्यक्ति को ढूंढने के लिए। एक गांव में एक पटेल गांव का मुखिया मिला। उस दिन उस पटेल से उसकी औरत की लड़ाई हो रही थी। लड़ाई हो रही थी कि उन तीनों ने पहुंचकर अपनी अपनी बात उसके सामने रखी। सुयोग से वह पटेल भी बहरा था। सो मुसाफिर तो कहे कि यह गडरिया हमें बकरी की टांग तोड़ने का व्यर्थ में इल्जाम लगाता है। गडरिया कहे इसने 2 ही घंटे तो हमारी भेड़ बकरी ताकि, कैसे हम इसे अच्छी बकरी दे दे। घुड़सवार कहे यह घोड़ा तो हमारे घर की घोड़ी से पैदा हुआ है, ये व्यर्थ में क्यों इल्जाम लगाते हैं कि यह घोड़ा चोरी का है। पटेल ने समझा कि हमारे घर लड़ाई हुई है सो ये सब लोग समझाने आए हैं। सो पटेल बोला तुम सब चले जाओ यहाँ से, तुम कौन समझाने वाले होते हैं, यह तो हमारे घरेलू लड़ाई है। तो जैसे जहां बहरे बहरे ही बसे हो वहां कैसे व्यवस्था बने, क्या न्याय हो, ऐसे ही इस जगत में जो हित की बात न सुन सके, हृदय में समझ न सके, मोक्ष मार्ग की बात जिसको न रुचे उसे तो बहरा ही कहना होगा। जहां बहरे बहरे ही बस रहे हो वहां सभी अपनी अपनी गा रहे हैं, हित की बात कोई नहीं सुन सकता। ये शरीर की बहरेपना की बात नहीं है, भगवान की बातें नहीं सुनने वाले सारे बहरे हैं, और वो जो हर एक अपने अपने कषाय के लगी है उसको, वो दूसरे की कौन सुनता है। यह लिखा ना, सब अपनी अपनी गा रहे हैं। वृद्धावस्था में बधिरता व कंपन का अलंकारिक कारण। यानी ये जो कवि की कल्पना है कि इसलिए कंपन हो रहा है कि सामने मृत्यु आई है, इसलिए कांप रहा है, इसलिए बहिरापन हुआ है कि कोई गाली देने और सुनने नहीं पड़े, इसको अलंकारिक भाषा में उसको बता रहे हैं। वृद्धावस्था की बात कही जा रही है। इस वृद्धावस्था में कानों ने काम करना बंद कर दिया। तिरस्कार, अपमान, निंदा, गाली आदि दुर्वचनों को सुन सुनकर कान थक गए। सो जो थक जाता है वह काम बंद कर देता है। वृद्धावस्था में इन कर्णों की शक्ति घट जाती है और इन आंखों ने भी अपना काम बंद कर दिया। इसकी अब दयनीय दशा हो गई है, अंध हो गया। और देखो ये बूढ़े कांप क्यों रहे हैं, इनके कंपन क्यों हो रहा है, कवि से पूछो, वे सबका राज जानते हैं ना। कवि जवाब देता है, अब इस वृद्ध के सामने काल आ गया है, काल यानी मृत्यु। सो उसके डर के मारे कांप रहा है। अर्थ उसका यह लगाना है कि वृद्धावस्था के बाद चौथी अवस्था और क्या आएगी। मरण वृद्धावस्था में थरथर कांपने लगता है, शरीर में बल नहीं रहता है, और क्या आएगी तो मरण, वहां रुकना पड़ेगा, फुल स्टॉप देना मरण के बाद। यहां लिखा ना वृद्धावस्था के बाद चौथी अवस्था और क्या आएगी तो मरण। ऐसी तो इसकी स्थिति है, वृद्धावस्था में सारे शरीर के अंग जीर्ण हो जा गए, जैसे अग्नि लग जाने पर घर की जो दशा हो जाती है ऐसी दशा इस शरीर की हो जाती है। फिर भी तू हे वृद्ध प्राणी, हे आत्मन, क्यों व्यर्थ की चिंताएं लाद रहा है। इन चिंताओं से कुछ भी तो हित नहीं होने का है। अहो, आशा जीर्ण नहीं हुई किंतु खुद ही जीर्ण हो गए। आशा तो और नहीं बढ़ रही है ना। ममत्व का संकट। भैया जितने संकट है वे सब अपने से भिन्न पदार्थ में ममत्व रखने के कारण है। कोई पुरुष धन में ममत्व रखता है तो उसके संकट आता है। कोई पुरुष शरीर में ममत्व रखता है उसके कारण संकट आता है। संकट भी क्या है, विकल्प कल्पना जाल, यही तो संकट है। मैंने धन से ममत्व रखता है तो धन के ही विकल्प चलते रहेंगे, यही संकट है। शरीर में एकत्व बुद्धि है उसमें ममत्व है तो कहते उसी के विकल्प चलते रहेंगे, वही संकट है। इन संकटों से छूटने का उपाय भी तभी मिलेगा जब सर्व से भिन्न ज्ञान स्वरूप अपने आत्म तत्व को निहारा जाए। जब भी आनंद मिलेगा इसी उपाय से मिलेगा। जिनको भी आनंद मिला है उन्हें इस उपाय से ही मिला है। बूढ़े पुरुष अपनी कमर झुकाकर चला करते हैं, झुक ही जाती है कमर, और किन्हीं किन्हीं की कमर तो इतनी विशेष झुक जाती है कि घुटने और सिर में मुश्किल से हाथ भर का अंतर रहता है। ये बूढ़े अपनी कमर झुकाकर क्यों चलते हैं, किसी कवि से पूछो। कवि बताते कि ये वृद्ध पुरुष नीचे झुककर अपनी जवानी ढूंढ रहे हैं। उनकी जवानी कहीं गिर गई है इसलिए वे अपनी जवानी ढूंढने के लिए झुककर चलते हैं। कहीं जमीन पर गिर गई हो मिल जाए, यह तो कवि की बात है। वृद्धावस्था में यह स्थिति हो जाती है। यह कुछ बूढ़ों को सताने की बात नहीं कही जा रही है, बात यह दिखाई जा रही है बचपन में लोग अनेक विकल्प कर करके तृष्णा आशा जाल गूंद गूंद कर धन संचय की धुन और स्वप्न बना बना कर ऐसे बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी यह आशा जीर्ण नहीं होती। यह सब व्यर्थ का रोना है, एक आत्मस्वरूप की भूल की, उसके फल में यह सब रोना रोना पड़ता है। ज्ञान भावना का महत्व। किसी भी क्षण जितनी देर आकाश में बिजली चमकती है एकाध सेकंड को भी उतनी ही देर अपने आप में बसा हुआ है ज्ञान विकास इस उपयोग की नजर में आ जाए, इतने क्षणों में इस जीव को मोक्ष प्राप्त होने का फैसला हो जाता है। क्या बात है। सुबह बात आई थी ना, वो श्रेणी की भी बात कितनी देखी थी हमने, ग्यारहवें गुण स्थान की, शुद्र भव से दो गुना, सेकंड का बारहवा हिस्सा है ना, और उसके भी नीचे और उसके छोटे छोटे काल देखे थे। देखो जिसने एक क्षण भी अपने आप में बसे हुए, ये तो वो शुद्र वो दो गुना हुआ ना, एक बार अंश हो गए, वो दो अपन चौबीस का रहने एक बार अंश। यानी यहाँ पर भी बिजली कितने चमक के देखते देखते विलीन होती है। तो कहते इतना भी अगर आत्मा का अनुभव कर ले तो मोक्ष होने का फैसला हो जाता है ना, आत्मा का अनुभव हो जाता है। जिसने एक क्षण भी अपने आप में बसे हुए ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर लिया उसका जीवन सफल है। एक क्षण भी अपने आत्मा का, एक समय नहीं कह रहे, एक क्षण कह रहे, यह एकत्व सहज ज्ञान प्रकाश नजर में आ जाए तो अनंत काल के सदा आनंद मग्न रहने का निर्णय हो जाता है। यानी उसे बिल्कुल अभी निर्णय पक्का हो जाता है, अनुभव पूर्वक का निर्णय है, केवल सुनी हुई और रटी हुई बातें नहीं, उसने शास्त्र से पढ़ी हुई नहीं है, भावना के आधी नहीं, संसार में रूलने का काम मिल जाता है और सदा के लिए संकटों से छूटकर शुद्ध सहज आनंद में मग्न होने का काम कर लिया जाता है। यानी भावना से या तो संसार में रूलो या मोक्ष प्राप्त कर लो, जैसी भावना जैसा मन करना हो तैसी भाव भावना बना लेनी चाहिए। यही रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत होड़ो।